प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सभी लोग हमारे पीछे स्कंद 6 अध्याय 5 श्लोक संख्या 38 पीछे प्रयास कीजिए दोहराने का।
एवं त्वं निर्नुकोश बालानां मतिभित हरे पार्षद मध्ये चरसी यशः निरपत्रपा एवं त्वं निर्नुकोशो बालानां मतिभिर्द्वरे पार्षदं मध्ये चरसि यशोः निरपत्रपः एवं त्वं निर्नुकोशो बालानां मतिर्वधरे पार्षद मध्य चरसि यशोः निरपत्रम् एवं त्वं निर्नुकोशो बालानां मतिभिर्हरे पार्षद मध्य चरसि यशोः निरपत्रपः।
शब्दार्थ दोहराई एवं इस प्रकार त्वं तुम निर्नुकोश दया विहीन बालानां अबोध अनुभवहीन बालकों का मतिभेद चेतना को दूषित करते हुए हरे हे भगवान के पार्षद मध्य निजी संगियों के बीच चरसे विचरण करते हुए यशः भगवान को बदनाम करने वाले निरपत्रपा निर्लज्ज। ब्रैकेट में लिखा यद्यपि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो किंतु तुम पाप कर्म कर रहे हो। अनुवाद इस प्रकार है प्रजापति ने आगे कहा इस तरह अन्य जीवों के प्रति हिंसा करते हुए भी अपने को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हुए तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो। तुमने व्यर्थ ही अबोध बालकों में संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न की इसलिए तुम निर्लज और दया से रहित हो। तुम भगवान के निजी संगियों के साथ किस तरह विचरण कर सकते हो। प्रजापति दक्ष की यह मनोवृत्ति आज भी बनी हुई है। जब युवागण कृष्ण भावनामित आंदोलन में शरीक होते हैं तो उनके पिता एवं तथाकथित अभिभावक कृष्ण भावनामित आंदोलन के संस्थापक पर अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अनेक पुत्रों को व्यर्थ ही प्रेरित करके उन्हें खाने पीने तथा मौज उड़ाने के भौतिक भोगों से वंचित कर दिया गया है। कर्मी यह सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में वर्तमान जीवन का पूरी तरह भोग किया जाए और उच्च लोकों में जाने के लिए कुछ पुण्य कर्म भी कर लिए जाएं, जिससे अगले जीवन में भी आनंद भोग सके। किंतु योगी और वह भी भक्ति योगी इस भौतिक जगत के मतों के प्रति क्रूर होता है। वह उन्नत भौतिकतावादी सभ्यता में दीर्घ जीवन का योग करने के लिए देवलोकों की यात्रा करने में रुचि नहीं रखता। जैसा कि प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने कहा है केवल्यम नरकायते त्रिदशः पुरा आकाश पुष्पायते। भक्त के लिए ब्रह्म में तदात्म्य नरक के तुल्य है और देवलोकों में जीवन मृग तृष्णा के समान है। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। शुद्ध भक्ति, योग सिद्धि, उच्च लोकों की यात्रा या ब्रह्म से एकाकार होने में रुचि नहीं रखता। वह तो एकमात्र भगवान की सेवा करने में ही रुचि रखता है। क्योंकि प्रजापति दक्ष कर्मी थे, अतः वे नारद मुनि की उस महती सेवा की प्रशंसा नहीं कर सके जो उन्होंने उनके 11,000 पुत्रों के साथ की थी। उल्टे उन्होंने नारद मुनि पापी होने का दोषारोपण किया और यह आरोप लगाया कि क्योंकि नारद मुनि भगवान के साथ रहते हैं इसलिए भगवान भी बदनाम हो जाएंगे। इस तरह दक्ष ने निंदा की कि नारद मुनि भगवान के प्रति अपराधी हैं, यद्यपि वे भगवान के पार्षद जाने जाते हैं।
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण वाले
हरे कृष्ण। तो भगवत श्रीमद भागवतम क्लास में आप सबका स्वागत है और प्रसंग चल रहा है प्रजापति द्वारा दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप। और इस प्रसंग में हम लोग पिछले कुछ समय से प्रजापति के द्वारा नारद मुनि को अब जो है अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो इसे 2-3 श्लोकों से वही चल रहे हैं। और ये एक बड़ी राहत देता है उन लोगों को, श्री दक्ष उवाच है, जिनको सच में इस तरह का फील होता है, जिनका इस संसार के प्रति अभी भी नहीं मतलब हमेशा से रहता ही है लगाव है इंद्रिय भोगों के प्रति विषयों के प्रति। और जो लोग पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि इस संसार में हम लोग इसलिए पैदा हुए भोग के लिए, खाओ पियो ऐश करने के लिए, और ये सारी इच्छाएं, इस प्रकार की जो इच्छा है भोगने की इच्छा, ये रजोगुण के द्वारा जो है जीवात्मा में इसके द्वारा उत्पन्न होती है और ये इतनी गहरी होती है कि इसको निकाल पाना अगर कोई व्यक्ति भौतिक प्रयासों से प्रयास करे तो असंभव सा ही है। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर महत कृपा आचार्यों की या गुरु की कृष्ण की डायरेक्ट कृपा हो जाए किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वो व्यक्ति इस प्रकार की भोग वासना से क्या है बच सकता है, निकल सकता है। हमारे इस भौतिक समाज में जब हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कुछ तपस्या करता है नवरात्रों में या किसी अन्य दिनों में, तो उसका बड़ा गुणगान होता है क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया जो सामान्य जन नहीं कर पाते या उसने कुछ ऐसी तपस्या की जिससे कि कोई आसानी से व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसका बड़ा नाम होता है, उसको लोग बहुत जो है उसको ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन अभी तक हमारे समाज में, भारतवर्ष में अधिकतर लोग जो हैं इस जीवन का उपयोग केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही सोचते हैं, और इंद्र तृप्ति का विषय इतना विशाल है कि जन्म से लेकर व्यक्ति के अंतिम समय तक इंद्रिय भोग इंद्रिय विषय उसको छोड़ते नहीं। एक बार बीरबल और अकबर के बीच में इस प्रकार बात हुई थी, तो अकबर ने माना नहीं कि वृद्धावस्था में भी कहीं कि भोग की वासना या काम वासना की इच्छा जाती नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, ये समय आने पर मैं बताऊंगा। तो एक बार उन्हीं के राज्य में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति जो कि मरणासन था, तो बीरबल ने कहा महाराज को कि चलिए महाराज उनका हालचाल पता कर आए, अंतिम समय में है उनको देखने चलते हैं, लेकिन आप अकेले मत आइएगा, आप अपनी जो युवा पुत्री है उसको भी साथ लेकर आइएगा। तो जब वो लोग उस रूम में एंटर करते हैं, और बीरबल ने पहले किया, फिर अकबर ने किया, और उसके बाद उनकी युवा पुत्री ने जब एंटर किया, तो वो जो मरणासन वृद्ध व्यक्ति था उसने तुरंत उसकी जो दृष्टि थी वो बीरबल पर, फिर राजा पर, और उसके बाद एक टुक उस नव युवती की ओर चली गई, और उसके बाद वहां से हटी नहीं काफी देर तक।
श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की।
तो इस प्रकार वहां से हटी नहीं, तो बीरबल ने महाराज को कहा देखिए महाराज, ये व्यक्ति मरणासन है, अब अपने जीवन के केवल अंतिम सांसें गिन रहा है, इसका शरीर इसका साथ नहीं दे रहा, आंखों से आंखें भी कमजोर हैं, कानों से ऊंचा सुनना, कफ वात पित्त से इसका गला अवरोध हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति के अंदर भोग की वासना इतनी गहरी जा चुकी है कि इसकी नियत या इसकी नजरें अभी भी विषय से हटती नहीं, तब अकबर को मानना पड़ा। इसी प्रकार रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में भी एक घटना आती है, जब भगवान को पालकी में निकाला जाता था, तो एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि एक जिसके साथ वो एक स्त्री से बहुत आकर्षित था, और जब पूरा का पूरा नगर भगवान की पालकी का स्वागत करने के लिए मार्केट में आता था, तो उस समय भगवान जब निकलते थे तो रामानुजाचार्य आगे चल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवक एक नव युवती की ओर बहुत आकृष्ट होकर देख रहा है, और इतना गहरा आकर्षण है कि बीच में कौन खड़ा है, लोग कहां देख रहे हैं, मुझे किसे देखना है, वो इस पूरे वातावरण को भूल गया। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि अरे ये व्यक्ति किस तरफ देख रहा है, देखा अरे किसी नव युवती की तरफ देख रहा है, तो उसने उनको कहा कि आप जो हैं मैं हैरान हूं आपकी इस एकाग्रता को देखकर कि भगवान से उनकी पालकी चली आ रही है और आपका जो आकर्षण है वो एक नव युवती की तरफ, कहते मुझे उसकी उसके नेत्र बहुत सुंदर लगते हैं, जिसने मेरे चित्त को चुरा लिया है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि इससे भी सुंदर नेत्र हैं, आप उनसे भी ज्यादा उनसे भी अट्रैक्ट हो सकते हो। कहते क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि विश्व में इससे ज्यादा कोई सुंदरी है। कहते ठीक है आपका लाना, इस समय पर इस स्थान पर मंदिर में बुलाया। और रामानुजाचार्य ने भगवान से प्रार्थना की हे भगवान, मैंने आज उस व्यक्ति को बुलाया जो कामावश एक स्त्री के प्रति इतना आकर्षित था कि उसको लगता था कि इससे सुंदर कोई नहीं है, उसके नेत्रों से सुंदर कोई और दूसरी चीज नहीं है, और जो आपसे भी विमुख हो रखा था, तो आप कुछ ऐसी कृपा करें कि जिससे उस व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति का भी ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो सके। तो जब बुलाया तो उसने कहा कहां है, तो उन्होंने कहा ये है राधिका जी। तो जब उन्होंने उनको देखा तो भगवान ने अपनी हरकत कर दी आंखों से और वो व्यक्ति जो है धराशायी हो गया, भगवान का भक्त बन गया। वे बात अलग है कि बाद में कुछ समय के बाद उनकी राजमहाराज ने उनसे विवाह भी कराया और वो दोनों बहुत अच्छे भक्त में बने। तो कहने का क्या मतलब है कि संसार में हर जीव, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में एक चर्चा आती है कि ये जीवात्मा जिस भी योनि में जाता है, चाहे पशु में है, चाहे पानी के अंदर है, चाहे पक्षियों की योनि में है, चाहे मनुष्य योनि में, जिस भी योनि में जाता है उस योनि में जाकर उस योनि से संबंधित आकर्षण या भोग की जो वस्तुएं हैं जब उसे वहां प्राप्त होती हैं, तो उसके द्वारा वो परम सुख की अनुभूति करता है। परम सुख अर्थात कहने का मतलब संतोष व्यक्त करता है कि हाँ आई एंजॉय। इस प्रकार सब कुछ भूल जाता है और केवल उस पर्टिकुलर योनि की विषय वस्तु उसको याद रहती है। यह हर योनि में होता है। जैसे एक छोटी सी चींटी चीनी के एक दाने के प्रति आकर्षित रहती है, मिठास के प्रति। इसी प्रकार एक कबूतर मादा कबूतरी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है। मतलब जिस योनि में जो प्रोमिनेंट एक इंद्रिय सुख दिया है वो व्यक्ति उसमें रम कर आनंद का भोग करता है। इसलिए ये जीवात्मा जिस जिस योनि में भ्रमण करता है उस योनि में सुख की अनुभूति करता है। फिर कह रहे हैं कि यही जीवात्मा जब मृत्यु होती है इसकी और जब नरक जाता है तो कुछ समय के बाद नरक की जो उसको यातना शरीर मिलता है वो उसमें भी क्या करता है, संतोष की अनुभूति करने लगता है, वो उससे भी अटैच हो जाता है। फिर किस प्रकार होता है संतोष, किस प्रकार महसूस करता है, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति, उस एक व्यक्ति को रोज 500 डंडे पड़ रहे हैं, कितने 500 ऊपर नीचे आगे पीछे खूब पड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन पैरों पे नहीं मारे 400 पड़े, खुश होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे? एक दिन 300 पड़े, खुश होगा कि नहीं होगा? वाह भगवान बड़ा मजा आया, नहीं आज तो मैं बच गया। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक जीवात्मा जिस भी शरीर में जाता है वो वहां के दुख और सुख जो भी हैं उससे इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है कि उसी को अपना जीवन मान बैठता है। और जब उसके दुखों की श्रृंखला में कुछ दुख कम होते हैं तो उसको वो सुख की अनुभूति करता है, समझिए कुछ कम हुआ। यही एग्जाम्पल कहीं और भी दिया था कि जैसे एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है, बाहर समुद्र के बाहर खड़े होने वाला व्यक्ति देख रहा है कि एक व्यक्ति समुद्र के अंदर खड़ा है और एक काफी आगे खड़ा है। तो जो काफी आगे खड़ा है जिसको कि लहरें आ रही हैं और खूब समुद्र में देखा है आपने लहरें आती हैं, और एक व्यक्ति बड़े जोश के साथ निडरता के भाव में लहरों के आगे खड़ा होता है और उन लहरों को सहन करता है और इंजॉय करता है उस लहरों में। तो ये वो लोग रजोगुणी लोग हैं जिनके पास धन है, रूप है, शिक्षा है, और इस समाज के जो इंद्रियों विषयों के द्वारा या दूसरी परिस्थितियों के द्वारा जो उसके ऊपर कष्ट आते हैं वो उसको इन चीजों के सुख में फेस कर लेता है। एक व्यक्ति वो है जो इसको फेस नहीं कर सकता तो इन लहरों से थोड़ा दूर खड़ा होता है, जो प्रयास कर रहा है, जिसके पास लहर आके खत्म हो जाती है तो वो प्रयास कर रहे हैं लहरों से बाहर, उसको मालूम है कि लहरें अल्टीमेटली मेरा नुकसान कर रही है। लहरें कभी रुकेंगी समुद्र में? कभी नहीं रुकती। लेकिन इस व्यक्ति ने 500 लहरों का सामना किया, इसने 600 लहरों का सामना किया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसी जगह पर हो जहां पर कि बार बार लहरें आनी है और आपको कष्ट देंगी, वो बार बार हिला डालेंगी आपको, कभी गिरा देंगी, कभी पलट देंगी, लेकिन उन लहरों का सामना कर भी लिया तो लहरें कभी रुकने वाली नहीं है। और अगर वहां पर खड़े हो तो लहरें खाते खाते आपको उसका टकराव होते होते एक दिन आपको धराशायी होना पड़ेगा। लेकिन जो लोगों को मालूम है कि लहर क्यों जाऊं मैं लहरों के बीच में, क्यों मैं कष्ट में हूं, तो ऐसा व्यक्ति उन लहरों से थोड़ा दूर आकर सब किनारे की ओर आता है, जाना चाहता है बाहर, किनारे की तरफ आ जाता है, तो उसको लहरें का कम प्रभाव होता है। ये वो लोग हैं जो प्रोग्रेसिव डिवोटीज हैं, जो जानते हैं कि इस संसार में केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, तो वो लोग अपने आप को उन जीवन की वो जो लहरें हैं जो दुख और सुख के रूप में आ रही हैं उनसे अपने को थोड़ा दूर करने का प्रयास करता है और ऐसे स्तर पर पहुंचता है जहां पर कि वो लहरें एकदम उसको कुछ प्रभाव नहीं डालती, देखा ना, कई लोग समुद्र में केवल कोने में खड़े रहते हैं, है ना, अंदर नहीं जाते, उनको मालूम है लहरें आ रही है तो दूर दूर रहते हैं, खाली पैरों पे पानी लगता है चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे बाहर है, मुक्त आत्मा है, जो देखते हैं कि भाई यहां का सुख दुख तो केवल मल के समान है, ठीक है ना। तो उस स्तर पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को इस प्रकार आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है। यहां पर दक्ष प्रजापति परेशान है, दुखी है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, वो अपने कर्मों से और उसके रिजल्ट से आसक्त हैं, उन्हें ये जीवन एक सत्य लग रहा है, इसलिए उनकी आसक्ति इस जीवन से है, उनके कुछ प्लान्स भी हैं और उन प्लान्स को पूरा होता देखना चाहते हैं। उन प्लान्स का ही एक अंग है उनके 10,000 पुत्र, जिनको कि नारद जी के संग के द्वारा एकदम जो है उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। कितना बड़ा झटका एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि व्यक्ति की कुछ प्लान है अपने बच्चों से। तो इस प्रकार इस समाज में ज्यादातर लोग जो अज्ञानता में रहते हैं, जो लोग पूरी तरह ये समझते हैं, जानते हैं कि ये जीवन हमें केवल किस लिए मिला, इसलिए जैसे उस दिन गिरिराज स्वामी महाराज आए थे तो उन्होंने बताया कि उनके पिता भी जब गीता पढ़ते थे तो कौन सी लाइन्स पे अंडरलाइन करते थे, जिसमें यह लिखा है कि भक्ति तो गृहस्थ आश्रम भी हो सकती है, नुकसान नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो इसलिए कर रहे थे ऐसा ताकि उनका पुत्र उनके पास आ जाए और घर से ये डिवोशनल सर्विसेज को एग्जीक्यूट करे। वो तो फिर भी ये तो एक टॉप मोस्ट ना होकर थोड़ा नीचे, ठीक है कि वो सोच तो रहा है, लेकिन ज्यादातर हम लोगों को ऐसे लोगों का संग या सामना करना पड़ता है जो लोग पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि ये जीवन किस लिए मिला है, भोग विलासता के लिए, और उनका मन वाणी और कर्म सुबह दोपहर और शाम त्रिसंध्याओं में कहां लगा हुआ है, इन भोगों को भोगने के लिए या इनके लिए और प्लानिंग करने के लिए। और फिर जो चीज खुद कर रहे हैं, जो धन या और चीजें एकत्रित कर रहे हैं, तो उनकी पूरी योजना है, जैसे लोग बोलते हैं कि हमने बेटा इतना कमा लिया कि हाँ ये सब जानते हैं, सब लोग बोलते हैं घर में, कई बार जब देखते हैं कि उनका चहेता बेटा कुछ कर नहीं पा रहा, निकम्मा निकला है थोड़ा सा, या ठीक ठीक है, तो पिता बड़े गर्व के साथ कहते हैं बेटा मैंने इतना धन कमा लिया है कि तू बैठ के खाएगा, है ना। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है स्वजना न सस्यात, गुरु न सस्यात, माता न सस्यात, पिता न सस्यात। बनने का अधिकार नहीं है माता पिता किसी को भी, गुरु इत्यादि, अगर वो अपने आश्रितों को जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के चक्र से बाहर ना कर सके। आजकल के इस माहौल में ज्यादातर लोग संतानों की उत्पत्ति केवल काम वश, इंद्र तृप्ति वश संतानों की उत्पत्ति करते हैं, और उन संतानों से भी वही अपेक्षा करते हैं कि जो उन्होंने किया, और फिर वही धन जो उन्होंने कमाया अपने जीवन की बलि देकर, अपने आध्यात्मिक जीवन की बलि देकर उन्होंने भौतिक जीवन अपनाया, उस भौतिक जीवन में उन्होंने नाना प्रकार के कर्म किए जो कि पाप पूर्ण भी रहे होंगे और पुण्य पूर्ण भी रहे होंगे, और उससे जो धन अर्जित किया खुद तो नहीं खा पाया लेकिन रख के चला गया, किसके लिए, अपने उन संतानों के लिए या आने वाली उन पीढ़ियों के लिए जो लोग जब आएंगे, और अगर वो क्योंकि खुद को तो ज्ञान नहीं था इसलिए हमने भौतिक स्तर पर सारे काम किए, तो हम चाहते हैं कि वो भी क्या करें, भौतिक स्तर पर ही कार्य करें, और वो धन या वो जो ऑपुलेंस वो छोड़ कर गए उसके लिए, वो उस बच्चे के लिए क्या काम करता है, जो व्यक्ति अज्ञानता में पैदा हुआ, जिस व्यक्ति का वातावरण ऐसा दिया जहां पर केवल भौतिकता है, वो धन क्या काम करेगा उसके लिए, बिल्कुल। तो ये धन जो उसने इतनी मेहनत से कमाया अपनी आध्यात्मिक जीवन को भूल कर या उसका त्याग कर खुद भी नहीं खाया, खुद भी एंजॉय नहीं किया, लेकिन किसके लिए छोड़ गया, आने वाले संतानों के लिए। ये संतानें वो संतानें हैं जो उसके परिवार में आई हैं, जो अंतिम समय तक विभिन्न प्रकार की इच्छाओं इस भौतिक जगत को भोगना चाहते थे और इस प्रकार इस मेंटालिटी के साथ देह त्यागा। कुछ पुण्य कर्म किए थे कि हाँ मैं और बड़ा बनूं, तो ऐसे कुछ जीवात्माएं कर्म और प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली ऐसे परिवार में जन्म लेते जहां पर उसको सारी की सारी सुविधाएं पहले से ही मिलती है। और फिर उन सुविधाओं का जब वो उपयोग करता है तो जब क्योंकि अज्ञानता में रहता है तो अज्ञानता के कारण हर चीज जो है दुरुपयोग में लाता है। और ऐसे परिवारों में अगर कोई व्यक्ति कहीं श्रील प्रभुपाद जैसे संत या और अन्य वैष्णव आचार्यों के कहीं संग में आ जाता है तो बताया गया शास्त्रों में लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है कि जैसे ही कोई व्यक्ति कभी एक अच्छे साधु का थोड़ा सा भी संग कर ले, जैसे कल हिजो में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि एक लब का मतलब क्या होता है, एक सेकंड का 14वां हिस्सा। अब कैलकुलेट करें तो ये तो बहुत ही कम है, तो उतना भी अगर कोई संग कर लेता है तो उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना, प्रसाद पाना, ऐसी गतिविधि में अगर कोई आ जाए तो उसके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार वो जीवात्मा जो कि इस प्रकार के वातावरण में पैदा हुआ था, एक साधु के संघ के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य जान बैठता है। नारद मुनि जी के द्वारा जिस प्रकार हरिश्चंद्र सर्वाश्रम को संग प्राप्त हुआ और 11,000 लोगों ने वैराग्य जीवन स्वीकार कर लिया, तो उस पिता की भी वही स्थिति होती है जब उसका पुत्र या पुत्री भक्ति की ओर आकर्षित होते। हमसे यंग बच्चे पूछते हैं, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, प्रभु जी घर में सब लोग बहुत क्या है अगेंस्ट है भक्ति के, तो क्यों लगता है ऐसा, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि पूरी तरह कन्विंस्ड है कि हम लोगों को भक्ति इतनी होती नहीं है, ये तो अति है भक्ति की। जवानी में आपने अपने हाथ में माला ले ली तो बहुत अति है, हमने 60 साल की उम्र में नहीं लिया आज तक, तुमने 16 साल की उम्र 17 साल की उम्र में माला पकड़ ली। हम आज तक चाय कॉफी और प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाए, तुमने अभी से बोलना शुरू कर दिया 18-20 साल की उम्र में कि मैं ये नहीं खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगी, अब हमसे बड़े भक्त बनकर दिखाओगे तुम? अरे नवरात्रे रखते थे हम लोग 9 दिन बिना प्याज लहसुन के हम भी नहीं खाते थे, ये थोड़ी 365 दिन ही ना खाएं, ये किस ग्रंथ में लिखा है? फिर नाना प्रकार के प्रश्न, प्याज और लहसुन कहां लिखा है? भगवान ने बनाया है, सब कुछ खाओ, इतना बढ़िया है, उसके अंदर प्याज के अंदर ये होता है, लहसुन के अंदर ये होता है। तो इस प्रकार नाना प्रकार के तर्क देकर यही हमारे अभिभावक और क्या कहते हैं अभिभावक बोलते हैं पिता माता जी, ये सब लोग हमारे भक्तिमय जीवन के जो भक्त लोग हैं उनके जीवन में रोड़े अटकाते हैं। पूरी की पूरी रिश्तेदारी इकट्ठी हो जाती है, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, इतने लोग समझाने आते हैं, जैसे कि एक से एक बड़े आचार्य हैं लोग, कोई श्री संप्रदाय से आ रहा है, कोई रुद्र संप्रदाय से आ रहा है, कोई किसी संप्रदाय से आ रहा है, ये बताने के लिए आह तुम्हारे घर में तो एक होनहार बालक पैदा हुआ है, भक्ति कर रहा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हाँ करनी चाहिए, बिल्कुल कराओ, ऐसा नहीं होता, एकदम उल्टा होता है। सब लोग आते मनाने के लिए, क्या हो गया बेटे, क्या परेशानी है, तेरी दादी भी तो करती थी, तेरे दादा ने भी की है, हम भी करते हैं, इतनी थोड़ी करनी चाहिए, इतनी बहुत है, पूरे दिन में अगर एक सेकंड भी मन लग गया तो वही भक्ति है। हम तो सबको मानते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, हम समभाव हैं, हम हर जगह जाते हैं माथा टेकते हैं, ये कैसी भक्ति कर रहे हो तुम, क्यों जीवन खराब कर रहे हो, मैच नहीं देखना, कहीं का प्रसाद नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बड़े अजीब ढंग से लोग समझाने के लिए आते हैं, सब लोग समझा रहे हैं, कितने अजीब स्थिति, एक बच्चा बैठा 8-10 लोग ऊपर से देख रहे हैं उसको, पहले प्यार से समझाते हैं, जितने हथकंडे अपना सकते हैं सब अपनाते हैं, प्रलोभन भी देते हैं नाना प्रकार। बेटा तेरे लिए गाड़ी लाए, बोले गाड़ी की चाबी, कहते पापा मैं रिक्शे में भी जा सकता हूं मंदिर, मंदिर नहीं जाना तुझे, ये बाइक की चाबी ले बेटा, नहीं चाहिए मुझे बाइक। तो जो प्रलोभन दे सकते हैं वो सब दिए जाते हैं। बेटा ये धन किसके लिए कमाया मैंने? तेरे लिए। पिताजी पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, जुबान लड़ाता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब फुल टाइम हुए या होना चाह रहे थे तो इतने बड़े जमींदार थे, उनकी तो इनकम भी बड़ी ज्यादा थी, 2 लाख तभी थी अशरफी उनके पास, तो उनको भी कहा, वो सब बांट बूंद देते थे, नहीं चाहिए, लेकिन महारपुर ने कहा भी नहीं, अभी तुम जाओ, अभी थोड़ा इस तरह रुक कर आना बाद में। तो ये हमारे संप्रदाय में ही नहीं, ये हर जगह है। और अब जब से शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, नारद मुनि जी की कृपा से भगवत भक्ति का प्रचार शुरू, एक्चुअली ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नारद मुनि जी ने भक्ति देवी को एक वचन दिया था कि मैं हरि का भक्त नहीं अगर मैंने हे भक्ति देवी तुम्हें कलयुग में हरे के हृदय में न स्थापित कर दिया। ये प्रिडिक्शन के कारण हो रहा है। भक्ति देवी से साफ साफ कहा कि मैं तुम्हें जो हूं कलयुग में हर एक व्यक्ति के हृदय में स्थापित कर दूंगा, नहीं तो मैं हरि का भक्त नहीं। यहां ये भी कह रहे हैं प्रजापति दक्ष कि तुम तो हरि के भक्त ही नहीं हो, तुम तो उनके साथ विचरण नहीं करते, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, तुमने मेरे सारे बच्चों को मुझसे छीन लिया, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि एक ये बनेगा एक वो बनेगा एक ये करेगा, इस प्रकार संतान अधिक बढ़ाएंगे, इस प्रकार हमारी जनरेशन चलेंगी। तो इस प्रकार जो इस समय हृदय की व्यथा दक्ष प्रजापति की है, यही व्यथा होती है उन माता पिताओं की जो भक्ति में पूर्णता नहीं है। अन्यथा जो व्यक्ति वास्तव में भगवान का भक्त बनना चाहता है, जिस व्यक्ति ने ग्रंथ पढ़े हैं, साधुओं का संग करा है, उसे पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे पता है कि ये जीवन कुछ क्षणों के लिए मिला है। ब्रह्मा जी के सामने तो ये जीवन कुछ क्षणों का ही है, 60 साल 70 साल, उसके बाद क्या? हाँ हमें पता है कि अगला जन्म होता है, तो तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि हमने तैयारी कुछ नहीं, तैयारी यह है कि जो हमने इकट्ठा किया है वो सारा हम अपने बच्चों को देके चले जाएंगे। लेकिन आपका क्या होगा? मेरा तो बस हो रहा टाइम पास, हम टाइम पास कर रहे हैं। हम टाइम पास कर ही नहीं सकते, मृत्यु सर्व हरश्चा हम कालो अस्मि, भगवान कहते हैं इस भौतिक जगत में काल के रूप में मैं उपस्थित हूं, और काल के रूप में जो रोज सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, धीरे धीरे हमारी आयु को क्षीण कर रहा है। हम लोग हमेशा आंखों से बाहर की दृष्टि देखते हैं, बाहर का जगत देखते हैं, ये दृष्टि अपने ऊपर नहीं आती। तो हम देखें कि किस प्रकार 5 साल की उम्र को हमने छोड़ दिया, 10 साल की उम्र आयु को हमने छोड़ दिया, वो शरीर हमसे छीन लिया, युवावस्था हमारी चली गई, जब हम लोग छोटी छोटी बात पे कुछ भी उठा लेते थे और ये कहते थे देखो मैंने कर दिखाया, एक जोश था, और धीरे धीरे 40 के बाद वो जोश, वो इंद्रियां जो सही ढंग से इस्तेमाल करनी चाहिए थी, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस थी, ये नॉलेज के लिए थी, ज्ञान लेने के लिए सेंसेस दी गई थी कि हम भगवत ज्ञान ले सकें, ये जान सके कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। पूरा का पूरा जो ये स्वप्न जैसा दृश्य हमारे सामने है, 4 घंटे का भी स्वप्न देखते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी रंक बनते हैं, कभी फिल्म स्टार बनते हैं, कभी घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे होते हैं। इस प्रकार हम लोग जब स्वप्न देखते हैं, एक स्वप्न की दुनिया में होते हैं, उस दुनिया में हम लोग खो जाते हैं, लेकिन जब उठाया जाता है तो पता चलता है वो स्वप्न था, चाहे वो गलत था चाहे सही था, लेकिन था स्वप्न। उसी प्रकार 60 साल 70 साल का एक स्वप्न है, एक शरीर मिला है स्त्री का या पुरुष का, और उसके बाद उसके साथ मिलने वाली नाना उपाधियां, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ये, मैं वो, और उसके अलावा एक और एक उपाधि आजकल नहीं आई है, नहीं तो नहीं कभी पुरानी है, ब्रांडेड की, ब्रांड नेम की, कि ये ब्रांडेड हूं मैं, है ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इस ब्रांड का पहनता हूं। हर व्यक्ति ब्रांडेड चीज पहनना चाहता है, तो एक उपाधि और जुड़ गई। किसी ने बताया कि एक उस समय चलने वाला सबसे अच्छा ब्रांड जो है, नाम नहीं बताएंगे, तो वो जो ब्रांड बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं वो, तो जो व्यक्ति बनाता था उनके बहुत अच्छी जानकार है कोई, तो वही ब्रांड की जब सामान बना रहे होते हैं तो मार्केट में आके 2000-3000 रुपए की एक चीज होती है, शुरुआत वहां से है, और उसी ब्रांड की वो कुछ आइटम थोड़ी सी अपने रिलेटिव को बांटने के लिए थोड़ी ज्यादा भी बनाते हैं, तो उनको 300 रुपए चार्ज करते हैं, जो कि कॉस्ट और सब कुछ मिलाकर है। तो कहने का क्या मतलब है, इस प्रकार की देहात्म उपाधियों से जुड़ जाते हैं और ये जीवन, ये स्वप्न एक सत्य लगने लगता है कुछ समय के। स्वप्न में जिस प्रकार व्यक्ति कुछ गलत देखता है तो आंसू निकल आते हैं, शरीर कांपने लगता है, कई बार बहुत अच्छा होता है तो स्वप्न में ही हंसने लगता है, लेकिन जब स्वप्न से उठता है तो देखता है वो सब ठीक है, ये स्वप्न था। उसी प्रकार जब ये जीवात्मा किसी शरीर के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही थोड़ा सा बड़े होते ही उसको अपने को भेद देखने लगता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना जीवन शुरू करता है। उसे लगता है कि मुझे इस जीवन को क्या करना है, बहुत अच्छे ढंग से जीना है, मेरे पे बहुत जिम्मेवारी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सारी प्लानिंग करता है। अब हमें बताइए, इस संसार में एक से एक बड़े हीरो स्टार्स हुए, एक से एक बड़े महारथी हुए हैं, ऐसे से सिकंदर जैसे योद्धा भी हुए हैं, आज तक कोई व्यक्ति 100 से अधिक जीकर आपको दिखा, नंबर एक 100-150 जिया भी होगा, अगर चला गया और जाने के पश्चात क्या ऐसा लगा कि संसार ने बहुत कुछ खो दिया, संसार एक जगह पर रुक गया, अब बंद हो गया सब चलना, नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं करता हूं कि मन्यते गुणा गुणेश, कि जब ये जीवात्मा अपने आप को शरीर मान बैठता है और कई उपाधियों से अपने को आइडेंटिफाई करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब कर्म करना शुरू करता है तो यह लगता है उसको कि कर्म मैं ही कर रहा हूं, और इन कर्मों का कर्ता मैं हूं, मैं ही कर रहा हूं, तो ये अहम का भाव आ जाता है, और इस तरह के भाव से फिर व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन जो है, आत्म साक्षात्कार जो है, ये सबसे अच्छी जड़ी बूटी है। जो व्यक्ति सारे कर्मों को करता हुआ, क्योंकि भक्त लोगों को हम ये नहीं बोलते कि आप सब छोड़ छाड़ के मंदिर आ जाइए, भक्तों को केवल यही बताया जाता है कर्म कीजिए लेकिन शास्त्र संवत, अकर्म कीजिए अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के कर्म कीजिए, संसार में रहिए लेकिन ठीक उस प्रकार जिस प्रकार एक गंदे पानी में कमल का फूल उगता है, वो उस कमल का फूल जो है उस पानी से टच नहीं होता। इस संसार को हम लोग अगर कर्म भूमि माने या पुण्य भूमि माने, जो भी भूमि मान के कर्म करना चाहें, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कर रहा है, हर व्यक्ति का देश महान है, किसी का ये देश महान है, कोई दूसरे देश में पैदा होता है उसका वो देश महान है, किसी की कुछ जाति महान है, सबका महान है। ये जो महानता का भाव भी है, ये भाव भी कई बार कंडीशन सोल के ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए कई बार व्यक्ति को अपने ऊपर कोई कष्ट आए तो कष्ट नहीं लगता, जब देश के ऊपर कष्ट आए तो कष्ट लगता है। तो एक इंद्र तृप्ति का एक वास्ट, एक और विस्तृत जो है क्षेत्र होता है, इसलिए व्यक्ति जो है अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख और दुख की अनुभूति करता जाता है, हर समय उसका एंटरटेनमेंट हो रहा है, कभी कुछ दुख आते हैं कभी कुछ सुख आते हैं, और वो इन सुखों और दुखों से बाहर सोच ही नहीं पाता, इसी जीवन को सब कुछ मान बैठता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है, और हमारा पूरा का पूरा वातावरण आत्म साक्षात्कारियों से नहीं भरा हुआ। ये किन से भरा हुआ है? जो देहात बुद्धि, जो सब लोग अपने को देह मानते हैं और देह को सच मानने के साथ साथ इस जीवन को भी सत्य मानते हैं और अपना पूरा जीवन मन वाणी कर्म इसमें जो है इन्वेस्ट किया हुआ है और इस प्रकार जीवन जी रहे हैं। इसलिए सब लोगों की स्थिति, जब उनके परिवार से कोई भक्त बनता है तो दक्ष प्रजापति जैसी स्थिति होती है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, और उनको श्राप देते हैं जो बेचारे भक्त हैं, जो अपने जीवन को इस प्रकार जी रहे हैं ताकि खुद को जलाकर दूसरों को प्रकाश करें। ऐसा नहीं, भक्त लोग को जलाते नहीं, वो भी आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद प्रदान करने के लिए। ये उस अंगूर की भांति है जो दूसरे दूर से खट्टे लगते हैं लोगों को। तो अगर कोई व्यक्ति ठीक प्रकार, देखिए भक्ति में इतना आनंद है, भगवान के हरि नाम में इतना आनंद है, केवल हमको जो अपनी देहात्म चेतना है, देहात्म चेतना, उससे थोड़ा सा अपने को दूर करना है। भगवान कह रहे हैं आगम अपाइन अनित्य तां तिक्ष्व भारत, ये जो सुख और दुख हैं, जो इंद्रियों के बोध से होते हैं, सेंस परसेप्शन से, सर्दी आना, गर्मी आना, ये केवल सेंसेस फील कर रही है ना, सेंस टच में होने से, पीछे मन और बुद्धि है जिसके। भगवान कह रहे हैं तां तिक्ष्व भारत, इसको केवल सहन करो, आप कुछ नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं केवल सहन, हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, हमारा जो कर्म है, जो ड्यूटीज हैं, उन्हें हम पूरी तरह से करने का प्रयास करें, चाहे हमारा ऑफिस सिस्टम है, चाहे घर का है, चाहे जो भी है, उसे पूरी परफेक्शन के साथ करें, बस बिना किसी आसक्ति के। जीवन का उद्देश्य सदैव याद रखें कि इस देह को छोड़ना है, लेकिन हमें अर्थात आत्मा को भगवान के धाम वापस जाना है, ये लक्ष्य हमेशा दिमाग में है। तब जाके व्यक्ति इस संसार में रहता हुआ भी इस जीवन के उथल पुथल से कभी भी विचलित नहीं होगा। वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है इस संसार में, अदरवाइज जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में, देहात्म चेतना में है या सो कॉल्ड भक्ति भी कर रहा है, अगर उसकी अटैचमेंट एज इट इज बनी हुई है, क्योंकि कई बार जो रेनन्सिएट लोग होते हैं, जो वैराग्य का जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग दुखी या परेशान नहीं होते, ये लोग तब तक दुखी और परेशान ये भी होते हैं, इनकी दुखी और परेशान होने का कारण कुछ अलग हो सकता है। जैसे एक भौतिकतावादी व्यक्ति है जो अपने बिजनेस के प्रॉफिट से बहुत ज्यादा अटैच है, तो बस उसके ऊपर और नीचे होने से वो दुखी रहेगा। एक माता पिता अपने बच्चों से बहुत आसक्त हैं, तो उनके आचरण को देखकर कमी होने पर, ज्यादा होने पर बहुत परेशान और सुखी रहेंगे। एक व्यक्ति जो है निर्धन है, तो घर में कंफर्ट इकट्ठे करने के चक्कर में सुखी या दुखी रहेगा, ये मिल जाए, अब ये आ जाए, ये लोन है, इसकी किस्त है, इन्हीं चीजों से परेशान रहेगा, है ना, टेलीविजन, फ्रिज, फ्लैट स्क्रीन चाहिए, मोबाइल ऐसा चाहिए, इन्हीं चीजों से परेशान है, क्रिकेट मैच हो, इन सब चीजों से। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीजों को त्याग कर प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, एक रिनन्सिएट लाइफ जीने का प्रयास कर रहा है, तो ये किन चीजों से परेशान और दुखी रहेंगे? हो सकता है कि ये उन सब चीजों से ना रहे, भारत जीता है, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो वैरागी, सेंसेक्स ऊपर हो चाहे नीचे, हमें कुछ पता नहीं, हम तो वैरागी, आपका टीवी टूट गया, आपके घर में था, आप दुखी हो, मेरे को क्या लेना देना, मैं तो सुखी हूं। उन सब चीजों से, उन सब चीजों के प्रति संभाव हो सकता है, लेकिन अगर वो वैराग्यपूर्ण जीवन जीता हुआ वो कला नहीं सीखा अनासक्त होने की, तो क्या होगा, उसकी अटैचमेंट्स अलग प्रकार की होंगी। क्या होंगी? उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसका नाम हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसके कीर्तन को, उसके लेक्चर को पसंद किया गया, मेरे क्यों नहीं पसंद किया गया? उसके इतने शिष्य, मेरे इतने क्यों? है ना, उसकी प्लेट में दो रसगुल्ले और मेरी प्लेट में एक क्यों? है ना, उसका बेड ऊपर क्यों, मेरा नीचे क्यों? उस पे 8 GB का, मेरे पास 2 GB का क्यों आईपॉड? ठीक है ना। तो इस प्रकार बराबर ही है, एक बाहर रह रहा है, एक अंदर रह रहा है, लेकिन बिल्कुल बराबर है, सेम धरातल। इसलिए कौन से गुण को डेवलप करना पड़ेगा? अनासक्ति, विषयों से अनासक्त रहने का कला सीखनी पड़ेगी। जब हो जाएंगे, जब अच्छा प्रयास करेंगे, उस दिन से सुखी जीवन, शांत जीवन, आनंदपूर्ण जीवन की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो एक एयर होस्टेस की तरह स्माइल देते रहो, बस खुश हो जी, बड़ा अच्छा है, ये चलता रहेगा। हम लोग, हमारी खुशी, हमारा सुख, हमारा दुख वातावरण, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। कितनी अजीब बात है, ये तो जानवर का भी होता है। उसको अगर अच्छी हड्डी मिल गई तो पूंछ हिलाता हुआ आएगा, नहीं, और नहीं मिली तो परेशान है, किसी ने मार दिया तो परेशान है, परिस्थितियों पे। तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली खुश होना और दुखी होना किसकी पहचान है? पशुवत जीवन की पहचान। ऐसी 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 कंडीशन होंगी तो मैं सुखी होऊंगा, इसके विपरीत होंगी तो दुखी होऊंगा। कुछ शब्द अच्छे लगते हैं, कौन से शब्द अच्छे लगते हैं हमें? जिसमें हमारा नाम हो, तारीफ हो, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, बस ये सुनने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बैठे, एक बार तो बोल दे प्रभु जी, है ना। इस प्रकार कुछ शब्द हमें परेशान कर देते हैं, हमारे जीवन में उथल पुथल ले आते हैं, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में उथल पुथल ले आता है, कोई मटेरियल सिचुएशन हमारे जीवन में उथल पुथल, तो तब तक दुखी ही रहेंगे, चाहे अंदर आ जाओ मंदिर के, चाहे बाहर रहो, दोनों सिचुएशन बराबर, कंडीशन अलग अलग है दुखी और सुखी होने। तो भक्त का मतलब है हर समय खुश, डिवोटी मीन्स ब्लिसफुल। कितने घंटे डिवोटी जाते हैं बाहर से, कहते हैं प्रभु जी जब मंदिर में रहते हैं तो बड़ा सुख चैन मिलता है, जैसे बाहर जाते हैं उफ। तो ये क्या है, कंडीशन बेकार है। आपको जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जो मंदिर में रह रहे हैं वो बेचारे कई बार दुखी क्यों होते? अगर इतना सुख चैन था, वो तो 24 घंटे यहां रह रहे हैं कई लोग नहीं तो कईयों को वहां पर, यहां पर भी परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार वातावरण के से संबंधित चीजों से दुखी और सुखी होना, या किसी के शब्दों से सुखी और दुखी होना, तो ये बड़ा नुकसान करते हैं। यह हमारी अटैचमेंट्स के, है ना, क्योंकि हम लोग अटैच, ये कारण है उसका। या जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो बड़ा दुख होता है, मैं ऐसा चाहती थी हुआ नहीं तो परेशान। तो देखिए, आत्मा का इस भौतिक जगत में आप चाहे गोभी का परांठा खिलाओ, चाहे पनीर का खिलाओ, आत्मा इस गोभी और पनीर के परांठे से कभी खुश नहीं हो सकती। आत्मा किससे खुश होगी? आत्मा वैसे खुशी रहती है, लेकिन हरि नाम से, भगवान के कथा से, भक्तों, हरि भक्तों के संग से सदैव प्रसन्नचित है। तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप सोडा वाटर ले आओ, आप लेमन जूस ले आओ, आप सादा पानी बिस्लेरी का ले आओ, आप किसी भी तरह का पानी ले आओ, उसमें घी मिलाने की कोशिश करो, वो नहीं मिलेगा। उसी तरह आप आत्मा को गोभी का परांठा दो, बड़ा बंगला दो, कोई कार्ड दो, किसी से कोई मतलब नहीं है, जितना मर्जी देने की कोशिश, दुखी रहेगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, मतलब हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब लोग हमारी जो आसक्तियां हैं विषयों से, विषयों के विचारों से और आसपास के जो वातावरण से जो हमारी आसक्तियां हैं, ये धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं होनी चाहिए, खुश होना तो इमीडिएटली होना चाहिए, एकदम खत्म कर दें और फिर हरि नाम लें, फिर भक्तों का संग करें, फिर प्रसाद पाएं, तो देखिए कितना आनंद। नहीं तो हम लोग हमेशा दक्ष प्रजापति रहेंगे, ये क्या कर दिया, वो क्यों कर दिया, दूसरों को कोसते रहेंगे, सिचुएशंस को कोसते रहेंगे, अथॉरिटी को कोसते रहेंगे, ये हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया, कभी भी आनंद नहीं ले पाए। और इस प्रकार बाहर वाले तो फिर भी बेचारे हमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छे क्यों हैं, क्योंकि ये पाप पूर्ण कर्म करते हैं और दुखी और सुखी होते हैं, लेकिन भक्त लोग पाप पूर्ण कर्म नहीं करते, क्या करते हैं, अपराध पूर्ण कर्म करते हैं। भक्तों के बीच में तो अपराध होते हैं और अपराधों की जो है सजा भी ज्यादा है। और यहां तक भी बताया जाता है कि जो माया है ना, पार्वती जी दुर्गा जी जो है, जो कष्ट देती है हमें, बहुत बड़ी सहयोगी है भगवान की, बहिरंगा शक्ति के रूप में इतनी कृपा करती है हमारे ऊपर, हमारे द्वारा हुए अपराधों को या कर्मों के पापों को इस प्रकार हमारे सामने प्रेजेंट करती है। या तो शारीरिक समस्याएं रहेंगी, यहां दर्द, अरे ये कैसे हो गया, पेट में प्रॉब्लम, कल क्या खाया था, कुछ खाया हो चाहे ना खाया हो सब ठीक चल रहा था, उसके बावजूद भी समस्या हो जाएगी, आप चिंता नहीं करते रहो क्यों हुई है, फिर मानसिक कोई ना कोई तनाव आ जाएगा, हर समय कोई ना कोई, अच्छा ये नहीं हो रहा तो अपना जो कोई प्रिय है उसके साथ कुछ हो जाएगा, आपको मानसिक तनाव आपके साथ, ये तो इस प्रकार कुछ ना कुछ हमारे कष्ट आते रहते हैं। भौतिकतावादी लोगों पर इसलिए आते हैं ताकि वो समझें कि हमें भगवान की तरफ चलना है, बस बहुत हो गया। अगर भक्तों के ऊपर आ रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है, ये मेरे से होने वाले अपराध है ना जो, उनकी पनिशमेंट है, मैं सुधर जाऊं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुधरते नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो लुप्त होता है उसके फिर से शुरू कर देते हैं, फिर कोई कष्ट आता है तो हमें लगता है कि नहीं अब नहीं करूंगा। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए भक्तों को और प्रयास करना चाहिए उन्हें कि हम लोग दक्ष प्रजापति की तरह ना रहे, हमारी अटैचमेंट बिल्कुल समाप्त हो, ताकि हम लोग एक ब्लिसफुल लाइफ जीते हुए कम से कम अपना तो उद्धार करें, दूसरे तो ऐसे देख के उद्धार हो जाएगा उनका, जब इतने ब्लिसफुल लोगों को देखेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो जी कह रहे हैं कि कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं जब हम लोग को देखते हैं, तो कैसे समझाएं उनको कि हम सही हैं और आप गलत हो। ब्लिसफुल लाइफ से अगर आप खुश हो और ठीक चल रहे हो तो आज नहीं तो कल, आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ समय के बाद जब आपको देखेंगे कॉन्टिन्यूसली आप भक्ति कर रहे हो, खुशी हो तो चुप हो जाएंगे और फिर कुछ समय के बाद क्या करेंगे, अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे और जुड़ जाएंगे। ये तीन कंडीशन। यस, कालो अस्मि, भगवान जो है, भगवान का एक एक्सटेंशन या रिप्रेजेंटेटिव काल भी है, जो समय है, मैं समय हूं। तो भगवान समय के रूप में या सूर्य के रूप में जो समय बढ़ रहा है धीरे धीरे, इस रूप में इस जगत के लोगों की हर चीज को क्षीण करते जा रहे हैं, हर समय मार रहे हैं। तो काल के चक्र में ब्रह्मा जी भी है, चींटी भी है, सबकी घड़ी चल रही है। और काल रूप में भगवान क्यों क्षीण करते हैं, क्योंकि भगवान को नाना प्रकार की लीलाएं करनी है, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सिस्टम चेंज होने, लोगों ने पुण्य कर्म करने हैं, देवताओं के लोक में जाएंगे, देवता के अगर भक्ति करेंगे तो आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, या फिर वहां से अगर नहीं कुछ करते तो वापस नीचे आएंगे। तो काल चक्र चलने से ही सब होता है, काल चक्र चलेगा नहीं तो क्या होगा, ये सब आध्यात्मिक जगत थोड़ी है, आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है, वहां सब कुछ ठहरा हुआ है, बस एक ही हुआ है, दिखाने के लिए होता है सूरज रात, वहां कुछ नहीं, सबकी उम्र बराबर रहती है। यहां पर काल चक्र चढ़ता है तो धीरे धीरे हर क्षण मृत्यु हमें मार रही है, मृत्यु के रूप में, और फिर एक बार फाइनल मृत्यु भी होती है, शरीर भी छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ये सब काल के चक्र में हुआ है। काल के रूप में भगवान इस पूरे पृथ्वी को भी समाप्त कर देते हैं, सब कुछ अपने अंदर ले लेते हैं, फिर से प्रकट करते हैं। ये सब काल के उसमें हो रहा है, इस रूप में काल उपस्थित है। और फिर ठीक है, ग्रंथ साहिब श्रीमद् भागवतम की, हरिराम संकीर्तन की, निताय गौर प्रमाण।